الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، पिछले चंद दिनों से जिक्र के फजाइल बयान किए जा रहे थे। आज की इस मजलिस से एक और नया टॉपिक शुरू हो रहा है और इस टॉपिक का ताल्लुक कयामत के दिन के साथ है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन किसी भी शख्स के पैर हिल नहीं सकेंगे जब तक कि वो इन 5 सवालों का जवाब नहीं देगा। तो कयामत के दिन मुसलमान हो काफिर हो, दीन इस्लाम से हो या दूसरे अदियान से हो, कोई शख्स इन 5 सवालों का जवाब दिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। कयामत के दिन के सवालात में से पहला सवाल ये होगा कि तुमने जिंदगी कैसे गुजारी। हम में से हर एक ये चाहता है कि इन 5 सवालों के सही सही जवाब दें ताकि हमेशा हमेशा की जिंदगी जो है वो आफियत के साथ गुजरे। इस सवाल का सही जवाब जो है, बेहतरीन जवाब जो है, वो तो यही है कि आखिरत की फिक्र में गुजारी, इबादत करते हुए गुजारी। ये दो जवाब इसलिए सबसे बेहतरीन जवाब है, इस दुनिया में आने के बाद हर इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरतों का मुशाहिदा करता है। हर इंसान को ये पता चल जाता है कि ना वो अपनी मर्जी से पैदा हुआ, ना वो अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाएगा। दिन और रात को बदलते हुए देखता है, इंसानों को पैदा होते हुए मरते हुए देखता है, बीमारियां इंसानों की मर्जी के बगैर आते हुए देखता है और शिफा भी अल्लाह की मर्जी से होते हुए देखता है। तो जिसके अंदर तलब हक होगी, सच बात की तलब की खोज होगी, उसके लिए इस जिंदगी या ये दुनिया की जिंदगी जो है वो बहुत ही बेफायदा सी हो जाएगी। उसको यकीन हो जाएगा कि ये दुनिया में वक्त थोड़ा सा है और इस थोड़े से वक्त में भी मेरे हाथ में बहुत कुछ है नहीं, और उसको ये भी यकीन हो जाएगा कि जो असल चीज मेरे साथ जानी है, जिसका वाकई फायदा है, वो आमाल है, नेक आमाल। तो जिस शख्स के अंदर तलब हक होगी, यही जो इस दुनिया में आके सोचेगा, अपने इर्द गिर्द देखेगा कि जी मेरे आने का मकसद क्या और मेरे जाने का मकसद क्या और क्या कामयाबी है, तो उसको जरूर बिस जरूर ये दुनिया बेफायदा सी नजर आएगी, इसकी रौनकें बेफायदा सी नजर आएंगी, इसकी राहतें बेफायदा सी नजर आएंगी, और उसको फायदा नजर आएगा इबादत में, अल्लाह की याद में कि जी ये वो चीजें हैं जो मुझे बचाएंगी। तो कयामत के दिन पहला सवाल ही यही कि दुनिया में तूने कैसे वक्त गुजारा। इस दुनिया की वक़्त अल्लाह के नबी ने भी हमें बताई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस दुनिया की वक़्त अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी है। यानी ये इतनी बेफायदा सी चीज है। इसकी मिसाल आप यूं समझें, दुनिया और आखिरत का मुकाबला। एक शख्स है, उसके दो कारोबार चलते हैं। एक कारोबार में उसको महाना मुनाफा 1 लाख रुपए होता और दूसरा कारोबार है जिसमें उसको महाना मुनाफा 2 करोड़ रुपए होता है। अब उसके नजदीक ये जो 1 लाख रुपए वाला कारोबार है ना, इसमें हालांकि मुनाफा होता है, मगर उसके नजदीक ये बेफायदा सा कारोबार है। यानी किसी दिन ये कारोबार खराब हो जाए, इसमें कुछ प्रॉफिट कम भी हो जाए, इसमें कोई नुकसान भी हो जाए, ये बंद भी हो जाए ना, उसको फिक्र नहीं। उसको असल फिक्र इस 2 करोड़ वाले कारोबार की है कि जी कोई मुकाबला ही नहीं है इन दोनों के प्रॉफिट्स का। तो यही हाल इस दुनिया और आखिरत का है कि इन दोनों कारोबारों की अगर सही समझ में हमें आ जाए कि यहां कितने दिन है, वहां कितने दिन है, तो ये दुनिया बेफायदा सी नजर आएगी। इसकी राहतें और खुशियां भी बिल्कुल आरजी, इसके गम भी बिल्कुल आरजी हैं। और उस दुनिया की राहतें करोड़ों अरबों साल पे मुहित, और उस दुनिया की गम भी करोड़ों अरबों साल पे मुहित। तो जो तालिबे हक होगा वो इस दुनिया में दुनिया के पीछे भागते हुए वक्त नहीं गुजारेगा। नबी अलैहि सलात व सलाम ने इरशाद फरमाया, अद-दुनिया मलऊनुन व मलऊनुन मा फीहा। दुनिया पे तो अल्लाह की लानतें बरस रही हैं, और जो कुछ इस दुनिया में उस पे भी अल्लाह की लानतें हैं। इल्ला जिक्रुल्लाह, मगर ये कि जो अल्लाह को याद करता है वो इस लानत से बचा। तो ये ऑटोमेटिक आउटकम है, जो बंदा इस दुनिया में इस दुनिया की हकीकत को समझेगा उसे दुनिया बेफायदा सी नजर आएगी, वो इस दुनिया के पीछे भागने में ठंडा होगा। और हो सकता है दुनिया के लोग उसको कहेंगे, यार तू तो बेवकूफ है, किन चीजों के पीछे भाग रहा है, कुछ कमाई कर। और इबादत के बारे में बहुत तेज होगा, क्योंकि उसको अंदाजा होगा कि यही चीज मेरे काम आनी है, उसको फायदा नजर आ रहा होगा। इस उम्मत के एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अपने वक्त के बादशाह भी थे और अल्लाह वाले भी थे, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह। हजरत अकदस थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि ये पहली सदी के मुजद्दिद भी थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह जो थे, वक्त के बादशाह बने। बादशाह बनने से पहले गवर्नर थे। जब गवर्नर थे तो दुनिया की तरफ बड़ी रغبत थी, बड़े शौकीन मिजाज थे और जबरदस्त किस्म के कपड़े पहनते थे, और तरह तरह के कपड़े उन्होंने बनाए हुए थे। इतने कपड़े थे कि कभी कभी सफर पे चलते तो अपने साथ जो कपड़े ले जाते वो कपड़े 60 ऊंटों पे लादे जाते। ये सफर के कपड़े थे। अल्लाह, जब बादशाह बने एक ही जोड़ा था, एक जोड़ा पहनते थे, उसी जोड़े को जुमा के दिन सुबह खुद धोते तहबंद बांध के। जुमे की नमाज तक वो सूख जाता, उसको पहनकर उसल कर कर जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाते। किसी ने पूछा कि हजरत जब गवर्नर थे तो इतनी रेल पेल थी, तो बादशाह बनने के बाद तो इससे ज्यादा होनी चाहिए रेल पेल। 60 ऊंटों पे तो आपके सफर के कपड़े आते थे, तो अब आपके पास सिर्फ एक जोड़ा है, उसको भी खुद धोते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं गवर्नर था तो मेरी जिंदगी का मकसद जो था वो बादशाह बनना ही था बस, और जब मैं बादशाह बना तो मेरी जिंदगी का मकसद आखिरत में कामयाब होना था। मुझे इस दुनिया की समझ आ गई थी। फरमाया, मुझसे पहले मेरे रिश्तेदार 4 से 5 लोग बादशाह बने, उनके फौत होने के बाद मैं बादशाह बना। इन चारों पांचों को कब्र में मैंने उतारा, तब मुझे इस दुनिया की हकीकत पता चली। ये दुनिया चल चलाओ की जगह है, तेरे किसी ने कोई ज्यादा नहीं रहना। इधर के गम भी आरजी, इधर की खुशियां भी आरजी। अल्लाह के नबी ने हमें बेहतरीन रास्ता बताया। आपने फरमाया, कुन फि दुनिया का अन्ना का गरीब, दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो, ये कोई ज्यादा ठहरने वाली जगह नहीं है। तो हर शख्स ने पहले सवाल का जवाब देना है, कयामत के दिन दुनिया में वक्त कैसे गुजारा। और जिस शख्स को अल्लाह की तलब होगी वो दुनिया में वक्त ऐसे ही गुजारेगा कि उसको दुनिया की चीजें बेफायदा लगेंगी, और उसको आखिरत जो है और आखिरत के आमाल, अल्लाह की याद फायदेमंद लगेंगी। तो एहतमाम से अल्लाह को याद करेगा और दुनिया के मामलात में जाने देगा, बेरगबती करेगा। अल्लामा इकबाल ने बेहतरीन शेर इस हवाले से फरमाया, वाकई शायर मशरिक थे वो, है तेरे जमाने का इमाम बरहक वही, है तेरे जमाने का इमाम बरहक वही, जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे। ये असल शेख भी वही है जो अपने मुरीदीन को इस दुनिया की बेफायदा होने की तलकीन कर पाए, वरना शेख भी किसी काम का नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस दुनिया की हकीकत समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअ तकब्बला ولسانا ذاكرا
آمين.
وقلبا خاشعا ورزقا واسعا والشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم
أرحم
الراحمين.
الراحمين.
جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة